मेघनाद विरचित असली प्राचीन रावण संहिता। रावण महान विद्वान एवं महापंडित था। रामायण पुराण आदि से यह सिद्ध होता है कि रावण वेदादि शास्त्रों का परम मर्मज्ञ था। सदा ब्राह्मण धर्म के अनुपालन में तत्पर रहता था। शुक्राचार्य का विशेष कृपा पात्र था। वह तंत्र, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, युद्ध कला, शास्त्रास्त्र के ज्ञान आदि से संपन्न था। आज भी उड्डीस तंत्र, अर्क प्रकाश आदि जैसे उनके ग्रंथ हमें सुलभ हो जाते हैं। ज्योतिष और योग के संबंधित ग्रंथ भी विद्वानों के अनुसार उपलब्ध हैं। रावण महान योद्धा था। उसका यह गुण विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट तो होता ही है। वहीं पर त्रिलोक विजय के अभियान के क्रम में यमराज को युद्ध के लिए ललकारना और उनसे ऐसा भीषण युद्ध करना कि उन्हें कालदंड अवैकल्पिक शस्त्र उठाने को मजबूर करना, लेकिन ब्रह्मा जी के ऐसा करने से मना करने पर यमराज को रावण के आगे झुकना रावण को महायोद्धा ही सिद्ध करता है। रावण महान पराक्रमी और बलशाली था। एक बार पुष्पक विमान से यात्रा करते समय उस विमान के अचानक रुक जाने पर रावण ने अवरोध रूप कैलाश को उठाने का ऐसा पराक्रम प्रकट किया कि उसके निवासी सभी भययुक्त होकर शंकर जी को पुकारने लगे। फिर शंकर जी ने अपने अंगुष्ठ से उसे दबाकर कैलाश को स्थिर व पूर्ववर्त किया। रावण महान नीतिज्ञ था। वह ऐसे कि अपने समकालीन जितने महाबलियों से उसका सामना हुआ उसमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होने योग्य महाबलियों से मित्रता या संधि भी करने में कभी पीछे नहीं रहा, जैसे बाली, सहस्त्रार्जुन, सुपार्श्व, संपाति आदि। रावण महान साधक था। रावण महान साधक यानी तपस्वी था। तभी तो कठोर तप से समय समय पर वरदान प्राप्त करता हुआ अपनी शक्ति व सामर्थ्य में वृद्धि करता हुआ त्रिलोकीश हुआ। रावण परम स्वकुल रक्षक एवं राजनीतिज्ञ था। वह अपने जीवन के अंत क्षण में लक्ष्मण से वार्ता और व्यवहार से उक्त कथन को सिद्ध करता है। वह कहता है कि हे लक्ष्मण, भगवान राम से द्रोह करने से मेरा दो लक्ष्य थे। एक यह कि मेरे और मेरे असंख्य कुलजनों के द्वारा जो रच साम्राज्य एवं संस्कृति विस्तार के निमित्त अत्याचार और पापाचार हुआ, इससे हम लोगों का उद्धार लाखों जन्मों में नहीं होने वाला था, अतः अपने सहित उनका भी उद्धार करना था। दूसरा यह कि मैं अपने रच कुल का समूल नाश भी नहीं होने देना चाहता था, अतः मैंने सर्वप्रथम राम भक्त विभीषण को अपमानित कर लंका से निकल जाने दिया, जहां से वह अपने इष्ट राम के शरण में गया। उससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने उस पर युद्ध के बहाने मरणांतक शक्ति का प्रहार किया, जिसे जब राम ने अपनी छाती पर सहन कर लिया तो मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरा कुल रक्षक सुरक्षित हाथों में है। इस प्रकार उक्त दोनों लक्ष्यों को सुरक्षित जानकर ही मैंने अपने कुलजनों को युद्धाग्नि में झोंकने जाने में कोई संकोच नहीं किया और स्वयं भी मैं तीव्र और उग्र युद्ध करने लगा। अब हम सभी राम के परमधाम जाने हेतु प्रस्तुत हैं। रावण परम दृढ़ निश्चयी था। रावण के संपूर्ण चरित्र का सूक्ष्म अध्ययन व मनन करने से यह बात सिद्ध हो जाती है कि उसे यह ज्ञात था कि राम ब्रह्म है, साधारण मनुष्य मात्र नहीं, लेकिन वह जानता था कि सीधे प्रभु के शरण में जाने से मुझ तामसी वृत्ति वाले का शीघ्र उद्धार तो नहीं ही होने वाला। अतः वह उन भगवान राम से वैर भाव को बढ़ाना ही उचित समझा, जिसमें वह सफल भी रहा। रावण ब्रह्मा और शिव का परम उपासक भी था। उक्त दोनों में अत्यंत निष्ठा रखने के कारण ही तो अनेक बार अपने 10 शीशों को भी समर्पित करने की दृढ़ चेष्टा करता रहा। मेघनाथ विरचित असली प्राचीन रावण संहिता। पहला अध्याय, रावण कुल वृत्त। रावण के प्रसंग में यह सर्वविदित तथ्य है कि वह विसर्वा महर्षि का पुत्र, महापंडित, महाविद्वान, महानीतिज्ञ, महादृढ़ प्रतिज्ञ, महायोद्धा, महाराजनीतिज्ञ, देवताओं को परास्त करने वाला, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर शासन करने वाला, ब्रह्मा और शिव से वरदान पाने वाला महाशिव भक्त था। वह रक्ष कुल को सर्वतोभावीन समृद्ध करने वाला परम विष्णुद्रोही, सदा शुक्राचार्य के बताए मार्ग का अनुसरण करने वाला अद्वितीय रक्ष कुलभूषण और महाशास्त्रज्ञ था। रावण संसार की समस्त विशिष्ट शक्तियों का स्वामी और वेदांत शास्त्र का भी परम मर्मज्ञ होने के साथ महाभौतिकवादी महामानव था। यहां उनके इन्हीं विशेषताओं को दृष्टि में रखकर हम कुछ चर्चा करेंगे। ऐसे तो रावण से संबंधित विषयों को संकलित करना इतना आसान नहीं, फिर भी कुछ अत्यंत लोक लाभकारी और आज की परिस्थितियों में भी उपादेयी लोक लुभावन विषयों को लेकर हम यहां प्रस्तुत हैं। उनमें सर्वप्रथम रावण के बारे में कुछ प्रचलित और कुछ उनके अनछुए व्यक्तित्व के पन्नों को पलटना आरंभ करती हैं। भगवान विष्णु से खिन्न शुक्राचार्य द्वारा मेघनाद को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित करते हुए कल्पांतर की घटित रावण की उत्पत्ति, उसकी तपश्चर्या आदि के साथ राम रावण युद्ध आदि घटनाओं की कथा जैसा कहा गया था, वैसे ही कथा के आधार पर यहां रावण और रक्ष कुल वृत्त को प्रस्तुत किया जा रहा है। राक्षसों का वध कर और लंका का राज्य विभीषण को सौंप अयोध्या पहुंचकर जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब समस्त मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, गार्ग्य, गालव और मेघातिथि के पुत्र कंडव, दक्षिण के निवासी स्वस्थ यात्री नमुची, अगस्त्य, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रयी निरशंगु, कवशी, धौम्य और सशिष्य कौशेय तथा उत्तर दिशा के आश्रयी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जामदग्नि और भरद्वाज, ये सात ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन में पहुंचकर डयोड़ी पर खड़े हो गए। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने इन्हें सादर बैठाया। तब वेद वेदांग के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन श्री राम से जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल तक्षण ही रामचंद्र के पास गया और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाया। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा, सबको यहां यथा सुख से ले आओ। फिर तो वे सब ऋषि श्रेष्ठ राम के पास पहुंचे। श्री रामचंद्र हाथ जोड़ उठ खड़े हुए, सबका अर्घ्य पाद्यार्घ्य से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक गौदान दिया। तत्पश्चात सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें सुवर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशासन और मृग चर्म बिछे थे। राम ने उन सब की कुशल पूछी। तब उन वेद वेता महर्षियों ने कहा, हे रघुनंदन, हे महाबाहो, आपकी कुशलता से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाली रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए भ्राता पुत्र पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। निसंदेह आप त्रैलोक के विजयी हैं। राजसेंद्र, रावण का वध कर आपको सीता सहित विजयी देखकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं। धर्मात्मन लक्ष्मण आपके अन्यतम हितकारी भ्राता हैं और आज माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो दैवात ही था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर और अकंपन आदि राक्षसों को मारा, अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसके समान विशालकाय भूमंडल में कोई था ही नहीं। दैवात ही आपने उसे भी मार डाला। त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राक्षसेंद्र, रावण तो अवश्य ही अकल्पित व्यक्तित्व था। उससे द्वंद्व युद्ध कर आपने विजय प्राप्त की, इससे भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का पराभव उतना अशक्य नहीं था जितना इंद्रजीत का था। युद्ध में उसे मार डालना यह तो बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। परंतु हमें तो आपके जय की इच्छा थी, उससे भी आपने विजय लाभ किया। यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। आपने हमें अभयदान दिया। दिव्यात्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर राम ने भी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़ लिया और पूछा कि हे भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? यह रावण से बढ़कर क्यों हुआ? अतिकाय त्रिशिरा आदि भी तो ऐसे ही दुर्धर्ष थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? उसने इंद्र को कैसे जीता था और वह कैसे प्राप्त हुआ था? पुत्र से बलि पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मेरा यह निवेदन है कि मुझसे यह कथन कीजिए। पुलस्त्य और विश्रवा का परिचय। महात्मा राघव के इस वचन को सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त जी ने कहा, हे राम, सुनिए। इंद्रजीत महातेजस्वी और बलवान था, जिससे उसका कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। हे राघव, इस संबंध में विशद चर्चा की आवश्यकता होने से सर्वप्रथम मैं आपसे पुलस्त्य, उनका पुत्र विश्रवा आदि का परिचय देते हुए रक्षकुल का वर्णन करते हुए भाइयों सहित रावण का जन्म और उनकी वर प्राप्ति का वर्णन करता हूं। पूर्व सतयुग में ब्रह्मा का एक पुत्र पुलस्त्य नाम का था, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। तब एक तो उनका ऐसा तप, दूसरे विमल गुणवान भी थे। इससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनिश्रेष्ठ मेरु पर्वत के समीप तृण बिंदु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तपस्वाध्याय में रत देख वेद मंत्र श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी। उनमें अप्सराएं भी रहती और ये सब ऋषियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं थी। इनके कारण तपस्वी पुलस्त के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे एक दिन पुलस्त जी ने कह दिया कि अब कल से जो कन्या यहां मुझे दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। इस ब्रह्मशाप के भय से दूसरे दिन कन्याएं वहां नहीं गईं, परंतु उनमें राजर्षि तृण बिंदु की कन्या ने नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन पुलस्त जी के आश्रम में चली गई और स्वच्छंदता से विचरने लगी। परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहां नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी वह राजर्षि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई। किंतु जैसे ही उन तेजस्वी मुनि को देखा, वैसे ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना शरीर देखकर बड़ी व्यग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली आई। यहां पिता ने देखते ही उसे जो समाचार पूछा तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं। आज पुलस्त मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अनायास हो आया है। मुनि ने नेत्र बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या को साथ ले पुलस्त मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपनी सेवकिनी बना लेने की प्रार्थना की। ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त जी धार्मिक राजर्षि तृण बिंदु के इन वचनों को सुन उस कन्या को बहुत अच्छा ऐसा कहकर अंगीकार किया। कन्या को पुलस्त जी को सौंप राजा तृण बिंदु अपने आश्रम में लौट आए। वह राजतनया भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहां रहने लगी। तब एक दिन उसके सील स्वभाव से संतुष्ट हो मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी उससे बोले कि हे सुश्रोणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूं कि जो उत्तम वंशों का वर्धक होगा और पौलस्त नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, जिससे उसका नाम वीश्रवा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ ही समय पश्चात त्रिलोक विख्यात यशोधर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को प्रसव किया। यह विश्रवा भी वेदज्ञ मुनि व्रतचारी तथा अपने पिता के समान तपस्वी था। प्रस्तुत घटना को मैंने मेघनाथ विरचित असली प्राचीन रावण संहिता से लिया है, जिसमें रावण सहित रचकुल परिचय, रावण का तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, तप भक्ति, साधना, योग, नीति एवं आचार व्यवहार से संबंधित ज्ञान पर आधारित परिवर्धित परिष्कृत अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ है। अगर आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। 10 से 12 दिनों के अंदर यह पुस्तक आपके घर पर पहुंच जाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो भी आप पेपैल से ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।